आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। जेएमएम की क्यादत वाले आईएनडीआईए इत्तेहाद के सरबराह हेमंत सोरेन ने झारखंड में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। जनाब सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के वजीराला के तौर पर हलफ लेंगे। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की क्यादत वाले महायुति इत्तेहाद ने रियासत में सरकार तश्कील देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में किसी भी मामले पर बहस मुबाहसे के लिए तैयार है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी अराकीन पार्लियामेंट से अपील की है कि वो इजलास के दौरान पार्लियामेंट में आला तरीन आदाब और सलीका कायम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत भारत के मशरकी खित्ते को तरजीह दे रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ओडिशा पर्व तकरीब में शिरकत की। और क्रिकेट में पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की सेंचुरियों की बदौलत भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए मजबूत पोजीशन में आ गया है। अब खबरें तफसील से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के रहनुमा हेमंत सोरेन ने आज रांची के राजभवन में गवर्नर सतीश कुमार गंगवार से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। हुकूमत साजी का दावा पेश करने से पहले जनाब सोरेन ने गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश किया। मुलाकात के बाद जनाब सोरेन ने सहाफियों को बताया कि नई हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब 28 नवंबर को होगी।
आगामी सरकार गठन की रिक्वेस्ट हम लोगों ने पेश किया है महामहिम जी के समक्ष, और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया, और इस क्रम में कांग्रेस प्रभारी, आरजेडी के प्रभारी, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे, और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है।
इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारगुजार सदर हेमंत सोरेन को रांची में एक मीटिंग के दौरान आईएनडीआईए इत्तेहाद के नौ मुंतखबा अराकीन असेंबली ने अपना लीडर चुना। आईएनडीआईए इत्तेहाद में जेएमएम, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट शामिल हैं। 81 रुकनी झारखंड असेंबली में आईएनडीआईए इत्तेहाद को 56 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई है। दूसरी जानिब बीजेपी की क्यादत वाला एनडीए इत्तेहाद 24 सीटें ही जीत सका। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी सरगर्मियां जारी हैं, क्योंकि बीजेपी की क्यादत वाले महायुति इत्तेहाद के रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने में अब महज 48 घंटे बाकी रह गए हैं। एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली मौजूदा सरकार की मुद्दत मंगल को खत्म हो जाएगी। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी पर मुश्तमिल इत्तेहाद ने असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त अक्सरियत हासिल की है। शिवसेना के रहनुमा एकनाथ शिंदे और एनसीपी रहनुमा अजीत पवार ने अपनी अपनी पार्टियों के नौ मुंतखबा अराकीन असेंबली के साथ अलग अलग मीटिंगें की हैं। बीजेपी रहनुमा चंद्रशेखर बावनकुड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र असेंबली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं होगा। पिछली 6 दहाइयों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र असेंबली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं होगा। 288 रुकनी कानून साज असेंबली में महायुति इत्तेहाद ने 235 सीटें जीती हैं, जबकि अपोजिशन महाविकास आघाड़ी को महज 49 सीटें हासिल हुई हैं। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास कल से शुरू होगा। ये इजलास 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। अलबत्ता मंगल को यौमे आईन की तकरीब के सबब पार्लियामेंट की नशिस्त नहीं होगी। हुकूमत ने इजलास से पहले आज नई दिल्ली में एक कुल जमाती मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत मौसम सरमा के इजलास के दौरान किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई खुश असलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं।
हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांति पूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए।
इस दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्टी एक सनतकार के रिश्वत के मुबैना मामले, मणिपुर की सूरत हाल और शुमाली भारत में बेरोजगारी और आलूदगी के मामलों पर बहस मुबाहसा चाहती है।
सबसे बड़ा 2300 करोड़ की जो आर्थिक रिश्वत है ये मुद्दा उठाएंगे जो कोर्ट ने संज्ञान में लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने। उसके बाद पोल्यूशन की हालत जो है यहाँ पर, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सीमावर्ती प्रदेशों में सुरक्षा नहीं है, कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हैं जो हम पहले उठाएंगे।
इस बीच पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आकाशवाणी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए अराकीन पर जोर दिया कि वो आईन साज असेंबली की बहस मुबाहसे से तहरीक हासिल करते हुए ऐवान में पार्लियामेंट के आदाब और सलीके को बरकरार रखें। उन्होंने अराकीन से अपील की कि वो पार्लियामेंट में आला तरीन आदाब कायम करें।
संविधान सभा की डिबेट और संविधान सभा के माननीय सदस्यों के जीवन, उनके आचरण, उनकी विहार, उनकी चर्चा, उनकी अच्छी परंपराएं पर पार्टियों को अपनाने की आवश्यकता है। हम इसी तरीके से उच्च कोटि की परंपराएं स्थापित करें जहां चर्चा और संवाद हो, जहां सहमति असहमति भी हो, विचारों की अभिव्यक्ति भी हो, लेकिन हमारा आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप, संसदीय डिबेट चर्चाओं के आचरण की तरह हो, ये हमारी अपेक्षा है।
रिजर्वेशन के मामले पर एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब बिरला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हमेशा ये नजरिया रहा है कि रिजर्वेशन समाज के महरूम और गरीब तबकों की जरूरत है।
आज भी समाज में दलित शोषित पीड़ित व्यक्तियों को उनके समानता, उनके व्यापक अधिकार आरक्षित करने का अभी समय है और इसीलिए हर सरकारों ने ये प्रयास किया है कि संविधान के साथ आरक्षण को लेकर कभी कोई सरकार ने छेड़खानी नहीं। मेरा मानना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा संविधान के मूल विचार और आरक्षण को लेकर अपनी स्पष्ट नीति, स्पष्ट विचार रखें।
जनाब बिरला का ये इंटरव्यू आकाशवाणी न्यूज के सुर्खियों में प्रोग्राम के तहत कल शाम 7:10 पर 100.1 FM गोल्ड पर सुना जा सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने मुअम्मर अफराद की डिजिटल धोखाधड़ी से हिफाजत करने और डिजिटल दुनिया की जानकारी हासिल करने में उनकी मदद करने के लिए नौजवानों के रोल पर जोर दिया है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात के 116वें नशरिए में मुल्क से खिताब करते हुए वजीर आजम ने एक बार फिर कहा कि इस कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट का कोई तरीका मौजूद नहीं है। इस बात पर जोर देते हुए कि मुअम्मर अफराद को साइबर जराइम का सबसे ज्यादा खतरा दरपेश है, जनाब मोदी ने कहा कि यह हर एक की जिम्मेदारी है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और इसके खतरात को समझने में मुअम्मर अफराद की रहनुमाई करे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक नौजवान जोड़े का जिक्र किया जो इस सिलसिले में समाज के लिए बेलौस काम कर रहा है और इस ज़िमन में दूसरे लोगों को भी तहरीक दे रहा है।
हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है, ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं।
जनाब मोदी ने कहा कि पेंशन बिना रुकावट हासिल करने के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से लोगों को सहूलत फराहम हुई है। उन्होंने कहा कि 2014 तक मुअम्मर अफराद को लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए बैंक जाना पड़ता था। वजीर आजम ने उन नौजवानों से जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है जोर देकर कहा कि वो सियासत में शामिल हों। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि अगले साल जनवरी में स्वामी विवेकानंद के 162वें यौम पैदाइश पर दिल्ली में खसूसी तकरीब विकसित भारत के नौजवान रहनुमाओं से मुजाकिरात के तौर पर मुनक्कद की जाएगी। मुल्क में स्वामी विवेकानंद का यौम पैदाइश मनाने के लिए हर साल 12 जनवरी को नौजवानों का दिन मनाया जाता है। आज NCC के दिन के मौके पर जनाब मोदी ने इत्मीनान जाहिर किया कि NCC में खवातीन कैडेट्स का इंदराज तकरीबन 40% हो गया है जो पहले 25% था। जनाब मोदी ने कहा कि नेशनल कैडेट कोर्स नौजवानों में डिसिप्लिन, क़यादत और खिदमत का जज्बा जगाती हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में NCC को मुस्तहकम बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 2014 में 14 लाख नौजवान एनसीसी से वाबस्ता थे।
NCC का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी NCC कैडेट रहा हूँ, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। NCC युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है।
वजीर आजम मोदी ने बैरूनी मुल्कों के अपने हालिया दौरे के बारे में कहा कि वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी بھارتی ثقافت کو تحفظ دینے اور اس کے فروغ دینے میں مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے عوام کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ وہ بیرون ملک آباد بھارتی برادری کے افراد کی تحریک دینے والی داستانوں سے واقف کرائیں۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت محض 5 مہینے میں 100 کروڑ سے زیادہ پیڑ لگائے جانے کا ایک سنگ میل طے کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس تحریک میں پورے ملک کے عوام نے حصہ لیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کے مشرقی خطے کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بھارت کے مشرقی حصے کو ترقی کا انجن سمجھتے ہیں۔ وزیراعظم نئی دلی میں اوڈیشا پرب تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوڈیشا کی ترقی کے لیے پچھلے سال کے مقابلے اس سال مزید 3% بجٹ مختص کیا گیا ہے۔
ایک سمے تھا جب بھارت کے پوروی حصے کو اوڈیشا جیسے راجیوں کو پچھڑا کہا جاتا تھا، لیکن میں بھارت کے پوروی حصے کو دیش کے وکاس کا گروتھ انجن مانتا ہوں۔ اس لیے ہم نے پوروی بھارت کے وکاس کو اپنی پراتھمکتا بنایا ہے۔ آج پورے پوروی بھارت میں کنیکٹیویٹی کے کام ہو، سواستھ کے کام ہو، شکشا کے کام ہو، سبھی میں تیزی لائی گئی ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ اوڈیشا بھارت کی ترقی میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور وہ ثقافتی وراثت سے مالا مال ہے جسے ملک اور دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اوڈیشا میں نئی سرکار کی تشکیل کے شروع کے 100 دن کے اندر 45,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کو منظوری دی گئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دروپدی مرمو اوڈیشا کی قبائلی برادری کی ایک بیٹی ہیں اور وہ بھارت کی صدر کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں اور ہم سب کے لیے فخر کا ذریعہ ہیں۔
آج اوڈیشا کی بیٹی آدیواسی سمودائے کی دروپدی مرمو جی بھارت کی راشٹرپتی ہے۔ ان کی پریرنا سے آج بھارت میں آدیواسی کلیان کی 1,000 کروڑ روپیوں کی یوجنائیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ یوجنائیں صرف اوڈیشا کے ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کے آدیواسی سماج کا ہت کر رہی ہیں۔
وزیراعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے بھارت منڈپا میں امداد باہمی کے بین الاقوامی اتحاد ICA کی عالمی امداد باہمی کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ امداد باہمی کے بین الاقوامی اتحاد کی 130 سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ICA کی عالمی امداد باہمی کانفرنس اور جنرل اسمبلی بھارت میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل ضلع کی جامع مسجد میں عدالتی حکم پر جاری سروے کے بعد پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ مراد آباد ڈویژن کے کمشنر انجانیا کمار سنگھ نے بتایا کہ جب ٹیم سروے کا کام ختم کر کے واپس آ رہی تھی تو ہجوم میں سے کچھ افراد نے جائے وقوع پر تعینات پولیس اہلکاروں پر پتھراؤ شروع کر دیا اور گاڑیوں میں آگ لگا دی۔ پولیس نے بتایا کہ اس سلسلے میں خواتین سمیت کئی لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پڑوس کے ضلعوں سے پولیس فورس کو طلب کیا گیا ہے، البتہ صورتحال قابو میں ہے۔ گوا میں جاری بھارت کے 55ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول ایفی کے دوران ہندی فلم اداکار رنبیر کپور نے آزمودہ اداکار اور فلم ساز راج کپور کی 100 سالہ تقریبات کے موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران منعقدہ ایک اجلاس کے دوران رنبیر کپور نے کہا کہ طاقتور کہانیوں پر مبنی راج کپور کی فلمیں محض تفریح سے آگے بڑھ کر شائقین سے تعلق جوڑتی تھیں اور ان پر دیرپا نقش چھوڑ جایا کرتی تھیں۔ کرکٹ میں بھارت نے آج پرتھ میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن میزبان آسٹریلیا کے خلاف 534 رن کا ہدف رکھا۔ بھارتی ٹیم نے آج دن کا کھیل ختم ہونے تک 12 رن پر آسٹریلیا کے 3 کھلاڑیوں کو جلدی آؤٹ کر دیا۔ اس سے قبل وراٹ کوہلی اور یشسوی جیسوال کی سنچریوں کی بدولت بھارت نے 6 وکٹ کے نقصان پر 487 رن بنائے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جی ایم ایم کی قیادت والے INDIA اتحاد کے سربراہ ہیمنت سورین نے جھارکھنڈ میں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ جناب سورین 28 نومبر کو جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ مہاراشٹر میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ بی جے پی کے قیادت والے مہایوتی اتحاد نے ریاست میں سرکار تشکیل دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے سبھی اراکین پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں اعلیٰ ترین آداب اور سلیقہ قائم کریں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔